अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो हमारे भीतर एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल सटीक होगा।
बिल्कुल, एक स्पष्ट रिपोर्ट की तरह।
हाँ, मतलब ये कुछ कुछ इंजीनियरिंग जैसा है। मान लीजिए किसी की हड्डी टूटी है, तो एक्सरे की उस काली फिल्म पर वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिखती है।
और डॉक्टर बस अपनी उंगली रखता है और कहता है, देखिए समस्या यहाँ है।
बिल्कुल, सब कुछ स्पष्ट, मापा जा सकने वाला और एकदम निश्चित होता है।
ये सच है कि इंसान होने के नाते हमें इस तरह की निश्चितता बहुत पसंद आती है। ये हमें सुकून देती है ना?
एकदम सही बात है।
हम चाहते हैं कि चीजें ऐसी हों जिन्हें आसानी से देखा जा सके, अलग अलग बॉक्स में रखा जा सके और जिनका एक सीधा सीधा मतलब निकाला जा सके।
लेकिन समस्या तब आती है जब हम इस एक्सरे वाली मानसिकता को लेकर प्राचीन धर्म ग्रंथों की दुनिया में कदम रखते हैं। वहां अचानक वो सटीकता की मशीन काम करना बंद कर देती है।
हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे व्याख्यात्मक परिदृश्य में होते हैं जो जो विज्ञान की तरह स्पष्ट नहीं है।
सच कहा जाए तो वो परिदृश्य कई बार काफी धुंधला, जटिल और बहुत रहस्यमय लगता है।
और ग्रंथों के अध्ययन में इसे ही हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स यानी अस्पष्टता का क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि प्राचीन लेखकों के काम करने का तरीका हमारी आज की आधुनिक बुलेट पॉइंट वाली सोच से बहुत अलग था।
और यही वो जगह है जहां आज का ये गहरा अध्ययन हमें ले जा रहा है। आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय डॉक्टर मैथ्यू एस हरमन की शिक्षाओं पर आधारित है,
विशेष रूप से उनकी सीरीज द बाइबल्स यूज ऑफ द बाइबल के तीसरे सत्र से।
जी, जिसका नाम है टाइपोलॉजिकल पैटर्न्स। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि प्राचीन ग्रंथों में ये जो जानबूझकर बनाए गए पैटर्न्स हैं, वो असल में कैसे काम करते हैं।
बिल्कुल, और हम ये भी समझेंगे कि भविष्य की ओर देखने वाले और अतीत की ओर देखने वाले टाइपोलॉजी में क्या बुनियादी अंतर है।
और इसके बाद हम रोमियो 5 और मत्ती 4 जैसे प्रमुख उदाहरणों का विश्लेषण करेंगे और अंत में ये जानेंगे कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ की व्याख्या करते समय एक व्यापक दृष्टिकोण और विनम्रता क्यों जरूरी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।
क्या वाकई उन सदियों पुरानी कहानियों में भविष्य के कोई गहरे रहस्य छिपे होते हैं, या फिर हम ही आज के चश्मे से उनमें कुछ ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां है ही नहीं?
ये इस पूरे विषय का सबसे बुनियादी सवाल है और इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डॉक्टर हरमन टाइपोलॉजी किसे कहते हैं।
अच्छा, तो उनकी परिभाषा क्या है?
उनकी दी गई परिभाषा के अनुसार ये कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है, ये धर्म ग्रंथों की एक जानबूझकर की गई रचना है,
जिसे इंटेंशनल स्क्रिप्चुरल शेपिंग कहा गया है ना।
बिल्कुल वही। इसका मतलब है कि बाद का कोई लेखक किसी पुरानी घटना, व्यक्ति या संस्था को जानबूझकर इस तरह से पेश करता है
कि पढ़ने वाले को तुरंत दोनों के बीच की गहरी समानताएं दिख जाएं।
एकदम सही।
लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि प्राचीन लेखकों ने ऐसा किया ही क्यों? मतलब क्या ये उस समय का कोई खास साहित्यिक तरीका था?
हाँ, बिल्कुल था। प्राचीन समय में, विशेष रूप से यहूदी और मध्य पूर्वी साहित्य में, इतिहास को घटनाओं के एक ऐसे चक्र के रूप में देखा जाता था जो एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है।
एक बड़े उद्देश्य की ओर।
इसलिए लेखक पुरानी कहानी की हर एक छोटी बात को नहीं उठाता, वो बेहद चयनात्मक होता है।
अच्छा, तो वो सब कुछ नहीं लिखता?
नहीं, वो केवल उन खास बातों को चुनता है जो आगे आने वाली एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करती हैं, और ये हमेशा ऐतिहासिक आधार पर होता है।
ऐतिहासिक आधार से आपका मतलब है कि घटनाएं वास्तव में घटी होनी चाहिए?
हाँ, ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है। डॉक्टर हरमन यहाँ पहली सदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध यहूदी लेखक फाइलो का उदाहरण देते हैं।
फाइलो, उनका तरीका अलग था क्या?
बहुत अलग। फाइलों का तरीका टाइपोलॉजी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। फाइलो क्या करते थे कि वे उत्पत्ति की ऐतिहासिक कहानियों और नदियों को उठा लेते थे
और फिर
उन्हें आत्मा, मानवीय प्रवृत्तियों या सद्गुण के बीच संघर्ष जैसी काल्पनिक रूपकों में बदल देते थे।
मतलब उनका वास्तविक इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता था?
बिल्कुल नहीं। लेकिन टाइपोलॉजी हमेशा असली इतिहास, असली जमीन और असली लोगों में रची बसी होती है।
लेकिन अगर इतिहास सिर्फ खुद को दोहरा रहा है, मान लीजिए एक राजा आता है, वो वही गलतियां करता है जो पुराने राजा ने की थी, तो ये तो बस एक चक्री की तरह गोल गोल घूमना हुआ।
हाँ, एक लूप की तरह।
तो क्या ये इतिहास का एक बहुत ही उबाऊ और नीरस रूप नहीं है?
अगर ये सिर्फ दोहराव होता तो निश्चित रूप से उबाऊ होता, लेकिन यहीं पर डॉक्टर हरमन प्रगतिशील रहस्योद्घाटन का विचार सामने लाते हैं।
अच्छा, प्रोग्रेसिव रेवल्यूशन।
हाँ, टाइपोलॉजी में एक बंद चक्र नहीं होता, बल्कि एक एस्केलेशन यानी निरंतर वृद्धि होती है।
एस्केलेशन मतलब चीजें पहले से बेहतर या बड़ी होती जाती हैं।
बिल्कुल। मूल घटना को एक टाइप या परछाई माना जाता है और जो आने वाली घटना होती है उसे एंटी टाइप या मूल तत्व कहते हैं। और यहाँ शर्त ये है कि वो नई घटना हमेशा पहले वाली घटना से कहीं अधिक महान और बड़ी होनी चाहिए।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी इमारत का ब्लूप्रिंट देखना।
अरे वाह, ये एक अच्छी तुलना है।
एक ब्लूप्रिंट थ्री आयामी नहीं होता, उसमें ईंटें, कांच और रंग नहीं होते, वो बस कागज पर खींची गई कुछ रेखाएं होती हैं।
सही बात है।
लेकिन वो जानबूझकर उसी असली भव्य इमारत की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जब आप उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं तो आप असल इमारत की सिर्फ एक परछाई देख रहे होते हैं।
ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। पुराने नियम ने इसराइलियों का मिस्र की गुलामी से बाहर निकलना, जिसे इतिहास में एक्सोडस कहा जाता है, वो एक ऐतिहासिक घटना थी।
हाँ, एक बहुत बड़ी घटना।
लेकिन बाद के नबी जैसे यशाया अपनी भविष्यवाणियों में एक नए एक्सोडस की बात करते हैं। ये नया एक्सोडस सिर्फ मिस्र से निकलने की नकल नहीं है।
तो वो क्या है?
वो पाप और बुराई की गुलामी से पूरी मानवता की आजादी के बारे में है, जो पहले वाले से बहुत बड़ा और महान है। यही वो एस्केलेशन है।
लेकिन अगर ये सब इतना जानबूझकर किया गया है तो एक व्याख्याकार के रूप में हम ये कैसे तय करें कि कौन सा पैटर्न असली है और कौन सा सिर्फ हमारी अपनी कल्पना?
ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है।
मतलब अगर हम पर्याप्त कोशिश करें तो हम किसी भी दो चीजों के बीच समानता ढूंढ ही सकते हैं।
और यही विद्वानों के बीच सबसे बड़ी बहस का विषय रहा है। बहस इस बात पर है कि क्या हम इन पैटर्न्स को घटना घटने से पहले ही मूल पाठ में देख सकते हैं,
या फिर उन्हें केवल बाद में पहचाना जा सकता है।
बिल्कुल। जेम्स हैमिल्टन जैसे विद्वानों का एक समूह है जिनका मानना है कि ये पैटर्न्स मूल पाठ में ही भविष्य की ओर इशारा करते हैं,
जिसे फॉरवर्ड लुकिंग टाइपोलॉजी कहते हैं ना। हाँ।
उनका तर्क है कि मूल लेखकों ने जानबूझकर ऐसे संकेत छोड़े जो भविष्य की राह देखते हैं, जैसे व्यवस्था विवरण के 18वें अध्याय में
जहाँ मूसा की बात है।
हाँ, जहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मैं तुम्हारे लिए मूसा जैसा एक नबी भेजूंगा। ये सीधा सीधा भविष्य की ओर देखने वाला इशारा है।
लेकिन रुकिए, क्या बैकवर्ड लुकिंग यानी अतीत की ओर देखने वाली टाइपोलॉजी सिर्फ एक बहाना नहीं है?
आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
मेरा मतलब है, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने दीवार पर तीर मारा और फिर जहाँ तीर लगा वहाँ जाकर लाल रंग से निशाना बना दिया।
अच्छा, आप आफ्टर द फैक्ट की बात कर रहे हैं।
क्या ये घटना के घट जाने के बाद भविष्यवाणी को जबरदस्ती फिट कर ले जैसा नहीं है?
ये एक बहुत ही जायज आपत्ति है और बहुत से लोग यही सवाल उठाते हैं, लेकिन रिचर्ड हेज जैसे विद्वान इसे इस नजरिए से नहीं देखते।
तो उनका क्या नजरिया है?
उनका कहना है कि कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो पहले से मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनका पूरा अर्थ तब तक नहीं खुलता जब तक कि कोई दूसरी बड़ी घटना उसे स्पष्ट ना कर दे।
उदाहरण के लिए
एक कुरिन्थियों में पौलुस मसीह को फसा का मेमना कहते हैं।
हाँ, पासओवर लैम्ब।
हाँ, अब जब आप मूल निर्गमन की कहानी पढ़ते हैं जहाँ दरवाजों पर मेमने का खून लगाया गया था, तो वहाँ ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि ये भविष्य में आने वाले किसी उद्धारकर्ता का प्रतीक है।
सही कहा।
या फिर भजन संहिता 22 को ही देख लीजिए,
जहाँ दाऊद लिखते हैं कि उनके कपड़े बांटे गए और लोग उन पर ताने मार रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, जब हम उस कविता को पहली बार पढ़ते हैं तो वो पूरी तरह से दाऊद के अपने तत्कालीन संघर्ष और पीड़ा की कहानी लगती है।
एकदम सही।
लेकिन जब हम क्रूस के ऐतिहासिक घटना के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो चारों सुसमाचार ठीक उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
मूल पाठ पढ़ते समय वो भविष्य के पैटर्न जैसा नहीं लगता था,
लेकिन बाद की घटना ने उसे गहरा अर्थ दे दिया।
बिल्कुल। तो डॉक्टर हरमन इस पर क्या स्टैंड लेते हैं? क्या वे फॉरवर्ड लुकिंग का समर्थन करते हैं या बैकवर्ड लुकिंग का?
डॉक्टर हरमन का निष्कर्ष ये है कि दोनों ही प्रकार अपनी जगह सही है। धर्म ग्रंथों में दोनों के ही स्पष्ट उदाहरण मौजूद है।
दोनों सही है, ये दिलचस्प है।
यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि डॉक्टर हरमन इन दोनों के बीच के संबंध को समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देते हैं। वे ल्यूमिनॉल का जिक्र करते हैं।
ल्यूमिनॉल, वो जो फॉरेंसिक में इस्तेमाल होता है।
हाँ, हम सभी ने क्राइम शोज में देखा है कि जब इन्वेस्टिगेटर किसी अपराध वाली जगह पर जाते हैं तो वे ल्यूमिनॉल नाम का एक केमिकल छिड़कते हैं और कमरे में अंधेरा कर देते हैं
और फिर खून चमकने लगता है।
बिल्कुल, ऐसा करते ही जहाँ भी खून के धब्बे होते हैं वे नीली रोशनी में चमकने लगते हैं, भले ही वे धब्बे नग्न आंखों से दिखाई ना दे रहे हों। अब ल्यूमिनॉल ने खून को वहां पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ उस खून को उजागर किया जो वहां पहले से मौजूद था। डॉक्टर हमन कहते हैं कि बात का रहस्य उद्घाटन उसी ल्यूमिनॉल की तरह काम करता है
जो पुराने टेक्स्ट में पहले से मौजूद लेकिन छिपे हुए पैटर्न्स को उजागर कर देता है।
एकदम सटीक।
ये सच में एक ऐसा उदाहरण है जो दिमाग में छप जाता है। ल्यूमिनॉल कुछ नया नहीं बनाता, बस जो है उसे दिखा देता है।
हाँ, और इसी से जुड़ी एक और एनालॉजी है,
और शायद इसी से वो दूसरी एनालॉजी भी जुड़ती है जहाँ डॉक्टर हर्मन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की बात करते हैं।
बिल्कुल, वो वाली भी बहुत दिलचस्प है।
जब हम कोई बेहतरीन सस्पेंस फिल्म देखते हैं तो क्लाइमैक्स में जाकर अचानक पता चलता है कि वो मामूली सा दिखने वाला मोमबत्ती का स्टैंड दरअसल हत्या का सबसे अहम सुराग था।
हाँ, और पहली बार फिल्म देखते समय हम उस पर ध्यान भी नहीं देते।
बिल्कुल, वो बस बैकग्राउंड का हिस्सा लगता है, लेकिन जब रहस्य खुल जाता है और हम फिल्म को दोबारा देखते हैं तो हमारा नजरिया बदल चुका होता है। हम कहते हैं, अरे ये सुराग तो शुरुआत से ही हमारी आंखों के सामने था।
हाँ, और एक बार जब आपको वो सुराग मिल जाता है तो पूरी कहानी का अर्थ ही बदल जाता है। आप उसे फिर कभी पुरानी नजर से नहीं देख पाते।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये ल्यूमिनॉल सच में काम करता है तो एक पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ टेक्स्ट कैसा दिखता है?
ये एक अच्छा सवाल है।
अब तक हम थ्योरी पर बात कर रहे थे, लेकिन आइए इसे कुछ बहुत ही ठोस उदाहरणों के साथ परखते हैं। चलिए रोमियो 5 पर चलते हैं,
जहां आदम और मसीह के बीच की वो बहुत ही प्रसिद्ध तुलना है।
जी हाँ,
रोमियो का ये हिस्सा टाइपोलॉजी का एक क्लासिक मास्टरपीस है। यहाँ पॉलस केवल समानताएं नहीं खोज रहे हैं, बल्कि वे आदम और मसीह के बीच एक बहुत गहरा विरोधाभास पेश कर रहे हैं।
कॉन्ट्रास्ट, राइट?
हाँ, वे समझाते हैं कि कैसे आदम के एक कृत्य से पूरी मानव जाति में पाप और मृत्यु का प्रवेश हुआ, लेकिन इसके ठीक विपरीत मसीह की एक आज्ञाकारिता से अनुग्रह और जीवन का संचार हुआ।
मतलब आदम के कारण जो न्याय और दंड मिला, मसीह के कारण वो धार्मिकता में बदल गया।
बिल्कुल,
और यहाँ वो एस्केलेशन या वृद्धि वाली बात बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है। पॉलस बार बार एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, हाउ मच मोर, यानी कितना अधिक।
हाँ, वो मुहावरा बहुत महत्वपूर्ण है।
ये दर्शाता है कि मसीह जो लेकर आए वो केवल आदम के नुकसान की भरपाई नहीं था, ये उससे कई अधिक विशाल, कई अधिक शक्तिशाली और महान था।
एकदम सही।
ये सिर्फ इमारत की मरम्मत नहीं थी, बल्कि एक पूरी नई और बेहतर इमारत का निर्माण था।
और अगर हम इसके और गहरे स्तर पर जाएं, तो हमें ये भी देखना होगा कि आदम से लेकर मसीह तक का ये सफर कोई सीधी रेखा नहीं था।
मतलब बीच में और भी चीजें थी।
हाँ, इसके बीच में कई अन्य ऐतिहासिक पड़ाव भी थे जो उसी पैटर्न को दोहराते हुए आगे बढ़ रहे थे,
जिसे हम मल्टीपल इटरेशंस कह सकते हैं, है ना? जैसे अगर हम शुरुआत से धागा पकड़ें, तो उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को एक आदेश दिया था
कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और उस पर अधिकार करो।
हाँ, फिर जब जल प्रलय खत्म होता है और नूह नाव से बाहर आते हैं, तो परमेश्वर लगभग वही बात उनसे भी कहते हैं, बस संदर्भ नया होता है।
बिल्कुल, पैटर्न दोहराया जा रहा है।
फिर यही धागा इब्राहिम की कहानी में दिखाई देता है, फिर इसराइल राष्ट्र के निर्माण में, और फिर राजा दाऊद के शासन में। हर बार ये पैटर्न थोड़ा और स्पष्ट होता है। और अंततः ये मत्ती 28 में जाकर अपनी चरम पूर्णता तक पहुंचता है, जहां यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों को चेले बनाओ।
हाँ, ये एक खूबसूरत कनेक्शन है।
ये ऐसा लगता है जैसे आदम वाले ब्लूप्रिंट की सबसे शानदार और अंतिम 3D इमारत यही है।
ये जो आपने अलग अलग पीढ़ियों से होते हुए इस धागे को जोड़ा है, यही प्राचीन लेखकों की असली वास्तुकला है। वे कोई अलग अलग कहानियां नहीं लिख रहे थे, वे एक ही महाकाव्य के अलग अलग अध्याय लिख रहे थे।
और शायद यही कारण है कि मत्ती 4 का प्रसंग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल,
जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये रोमियो 5 की तुलना में काफी अलग है। रोमियो 5 बहुत स्पष्ट है, लेकिन मत्ती 4 में यीशु के जंगल में परीक्षा वाले प्रसंग में जो टाइपोलॉजी है वो बहुत ही सूक्ष्म है।
हाँ, वो बहुत सटल है।
आपको उस जमाने के पाठक के नजरिए से इसे देखना होगा।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो हम पाएंगे कि मत्ती यहाँ एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक समानांतर रेखा खींच रहे हैं,
इसराइल और यीशु के बीच।
हाँ, वे जानबूझकर यीशु और प्राचीन इसराइल के बीच एक तुलना स्थापित कर रहे हैं। याद कीजिए, पुराने नियम में इसराइल को परमेश्वर का पहलौटा पुत्र कहा गया है,
और मत्ती की कहानी में भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया जा रहा है।
बिल्कुल, ऐतिहासिक इसराइल को परमेश्वर की उपस्थिति द्वारा लाल सागर पार कराकर जंगल में ले जाया गया था। यहाँ यीशु को बपतिस्मा के पानी से निकलने के बाद परमेश्वर की आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया जाता है।
और इसराइल 40 साल तक उस भयानक जंगल में भटका था
और यीशु ठीक 40 दिन और 40 रात उसी जंगल में रहते हैं।
सोचिए जरा, अगर हम उस पहले सदी के पाठक की कल्पना करें जो इस कहानी को पढ़ रहा था, तो जंगल और 40 जैसे शब्द सुनते ही उसके दिमाग में तुरंत इसराइल के इतिहास की सारी यादें ताजा हो जाती होंगी।
निश्चित रूप से।
और फिर जो 3 परीक्षाएं शैतान यीशु के सामने रखता है, वे कोई रैंडम परीक्षाएं नहीं थी, वे ठीक वही परीक्षाएं थी जिनका सामना इसराइल ने किया था।
एकदम सही। इसराइल ने भूख और पानी की कमी होने पर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन जब यीशु 40 दिन के बाद भूखे होते हैं और शैतान उनसे पत्थरों को रोटी में बदलने को कहता है, तो यीशु हार नहीं मानते।
वे व्यवस्था विवरण का संदर्भ देते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता।
हाँ।
फिर जब इसराइल को पानी नहीं मिला तो उन्होंने मस्सा नाम की जगह पर परमेश्वर की परीक्षा ली।
और इसके जवाब में जब शैतान यीशु को मंदिर के शिखर से कूदकर परमेश्वर की सुरक्षा परखने को कहता है,
तो यीशु फिर व्यवस्था विवरण का हवाला देकर परमेश्वर की परीक्षा लेने से इनकार कर देते हैं।
अद्भुत।
और अंतिम परीक्षा तो और भी गहरी है। इसराइल अंततः मूर्ति पूजा में गिर गया था, लेकिन जब शैतान यीशु को दुनिया के सारे राज्य और उनकी शानो शौकत देने का लालच देकर केवल एक बार खुद को दंडवत करने को कहता है,
तो यीशु दृढ़ता से कहते हैं कि केवल अपने परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए।
बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु शैतान के हर हमले का जवाब देने के लिए व्यवस्था विवरण से जो आयतें चुन रहे थे, वे सिर्फ उस परिस्थिति में फिट बैठने वाले कोई रैंडम सुविचार नहीं थे।
नहीं, वे बहुत सोच समझ कर चुने गए थे।
वे जानबूझकर इसराइल के इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे थे जहां वे विफल हो गए थे। यीशु असल में उसी पुरानी कहानी को, उसी परीक्षा को सही तरीके से फिर से जी रहे थे।
बिल्कुल।
वे उस जगह सफल हो रहे थे जहां पूरा इसराइल फेल हो गया था।
हाँ, और यही बात मत्ती अपने पाठकों को समझाना चाहते हैं। वे दिखा रहे हैं कि यीशु ही सच्चे आज्ञाकारी और परिपूर्ण पुत्र हैं। ये टाइपोलॉजी का एक ऐसा उदाहरण है जो केवल 2 घटनाओं की तुलना नहीं करता, बल्कि पूरी की पूरी ऐतिहासिक विफलताओं को एक नई सफलता में बदल देता है।
अब यहां मुझे थोड़ी उलझन हो रही है।
कैसी उलझन?
जब हम इस तरह से ग्रंथों को देखना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में कोई स्विच ऑन हो गया हो। अचानक सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ लगने लगता है।
हाँ, ये होना बहुत आम है।
मतलब मैं अपने डेस्क पर रखा लाल रंग का कप देखता हूँ और सोचता हूँ कि शायद इसका भी कोई गहरा मतलब होगा। क्या यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है कि हम हर छोटी से छोटी और महत्वहीन चीज में भी टाइपोलॉजी ढूंढने लगे?
ये केवल एक खतरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गलती है जो इतिहास में कई लोगों ने की है।
अच्छा।
और इसीलिए डॉक्टर हर्मन इन पैटर्न्स को लागू करने की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। उनका कहना है कि हमें टाइपोलॉजी को 2 अन्य साहित्यिक उपकरणों से पूरी तरह अलग रखना होगा।
वे 2 उपकरण कौन से हैं?
पहला है साहित्यिक प्रतिध्वनि, जिसे हम इको इफेक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है रूपक, जिसे हम एलेगरी के नाम से जानते हैं।
तो अगर हम एक एक करके इन्हें समझें, सबसे पहले साहित्यिक प्रतिध्वनि से टाइपोलॉजी कैसे अलग है?
साहित्यिक प्रतिध्वनि का मतलब होता है जब एक कहानी दूसरी कहानी की याद दिलाती है, लेकिन उसमें भविष्य की किसी महान घटना का इशारा या कोई एस्केलेशन नहीं होता।
कोई उदाहरण?
उदाहरण के लिए उत्पत्ति की किताब में इब्राहिम अपनी जान बचाने के लिए एक विदेशी राजा के सामने अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन बताते हैं।
हाँ, ये किस्सा तो है।
बाद में उनका बेटा इसहाक भी ठीक ऐसा ही करता है और अपनी पत्नी को बहन बताता है। अब यहाँ एक स्पष्ट समानता है, लेकिन ये टाइपोलॉजी नहीं है,
क्योंकि यहाँ कोई वृद्धि नहीं हो रही है।
बिल्कुल। ये सिर्फ एक साहित्यिक तरीका है ये दिखाने का कि एक पीढ़ी की कमजोरियाँ कैसे दूसरी पीढ़ी में भी दिखाई देती है। ये केवल एक गूंज है, कोई भविष्यवाणी नहीं।
समझ गया। और रूपक यानी एलेगरी टाइपोलॉजी से किस तरह भिन्न है?
रूपक में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें टेक्स्ट के मूल ऐतिहासिक संदर्भ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसा हमने शुरुआत में फाइलों के बारे में बात की थी।
जहां वे इतिहास को सिर्फ सिंबल बना देते हैं।
रूपक में क्या होता है कि व्याख्या करने वाला व्यक्ति पाठ के भीतर से अर्थ निकालने के बजाय, जिसे हम सही तरीके से व्याख्या करना कहते हैं, बाहर से कोई अपना दार्शनिक विचार उस पाठ पर थोप देता है। वो हर पेड़, हर पत्थर और हर नदी का एक ऐसा आध्यात्मिक अर्थ निकाल लेता है जो उस कहानी के मूल लेखक के दिमाग में कभी था ही नहीं।
तो ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी पुरानी तस्वीर में हम आज के समय का कोई फिल्टर लगा दें और दावा करें कि वो तस्वीर हमेशा से वैसी दिखती थी।
बहुत सटीक कहा आपने। डॉक्टर हर्मन ये भी कहते हैं कि टाइपोलॉजी हमेशा व्यापक संरचनाओं पर काम करती है, जिसे वो मैक्रो लेवल कहते हैं।
हाँ, मैक्रो लेवल।
वे बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि हमें माइक्रो लेवल यानी छोटी छोटी बारीकियों में नहीं उलझना चाहिए। जैसे अगर पुराने नियम के किसी किस्से में कहीं लाल रंग की रस्सी का जिक्र है, तो हमें तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि ये सीधे तौर पर यीशु के लाल खून का प्रतीक है। बिल्कुल नहीं, यह व्याख्या को बहुत ज्यादा खींचने वाली बात हो जाती है।
हाँ।
टाइपोलॉजी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, मुख्य पात्रों और प्रमुख संस्थाओं पर लागू होती है, न कि हर छोटे रंग, कपड़े या वस्तु पर।
लेकिन यहाँ मैं थोड़ा तीखा सवाल पूछना चाहता हूँ।
जी पूछिए।
क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा है कि फला व्यक्ति या घटना टाइप है, तो हमें अपनी तरफ से कोई भी अनुमान लगाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए?
ये एक अच्छा पॉइंट है।
मेरा मतलब है, अगर ऐसा है तो फिर ग्रंथों का अध्ययन इतना सीमित हो जाएगा। जैसे यशु की कहानी को ही ले लीजिए।
हाँ, जोशुआ की कहानी।
वे मूसा के बाद नेतृत्व संभालते हैं, वे इसराइल के लोगों को उनके वादा किए गए देश में ले जाते हैं, उन्हें उनकी विरासत दिलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम भी मूल भाषा में यीशु के नाम के समान ही है, लेकिन नया नियम कहीं भी स्पष्ट रूप से शब्दों में ये नहीं कहता कि यीशु यीशु के टाइप हैं।
सही बात है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है।
तो क्या आपके और डॉक्टर हर्मन के अनुसार हमें इस इतनी बड़ी समानता को टाइपोलॉजी मानने से इनकार कर देना चाहिए?
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल हर गंभीर अध्येता के मन में आता है। डॉक्टर हर्मन का ये बिल्कुल नहीं कहना है कि हमें खोजना या सोचना बंद कर देना चाहिए।
अच्छा।
एक व्याख्याकार के रूप में हमारा काम ही उन पैटर्न्स को ढूंढना है जो सदियों की परतों के नीचे दबे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, हमें ये काम हठधर्मी होकर नहीं करना है।
हठधर्मी से आपका मतलब है कि हम ये दावा न करें कि केवल हमारा ही नजरिया सही है?
हाँ, इसे डॉक्टर हर्मन व्याख्यात्मक विनम्रता या इंटरप्रेटिव ह्यूमिलिटी कहते हैं। अगर धर्मग्रंथ खुद स्पष्ट रूप से किसी चीज को टाइप नहीं बताते हैं, तो हमें उस विचार को एक ढीली पकड़ के साथ देखना चाहिए।
ढीली पकड़ मतलब एक संभावना के रूप में?
बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ एक बहुत मजबूत और आकर्षक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो शायद एक बड़ी कहानी का हिस्सा हो, लेकिन हम उस पैटर्न को एक कठोर सिद्धांत या नियम नहीं बना सकते
जिसे मानना सबके लिए अनिवार्य हो।
हाँ, हमें इस बात की गुंजाइश छोड़नी चाहिए कि शायद हम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे हैं।
ये वास्तव में एक बहुत ही संतुलित और परिपक्व दृष्टिकोण है। ये हमें एक तरफ अतिकल्पनाशील होने से रोकता है और दूसरी तरफ हमें इतिहास की उन गहरी परतों का आनंद लेने की आजादी भी देता है।
एकदम सही।
तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी धागों को एक साथ समेटें, तो इसका मुख्य सार क्या निकलता है?
इसका सबसे बड़ा सार ये है कि इतिहास और प्राचीन धर्म ग्रंथ केवल बिखरी हुई बेतरतीब घटनाओं का कोई संग्रह नहीं है। उनमें बहुत गहरे और जानबूझकर बनाए गए पैटर्न मौजूद हैं। ये ऐसे पैटर्न हैं जो समय के साथ और अधिक स्पष्ट और अधिक महान होते जाते हैं। ये एक परछाई से असलियत की ओर बढ़ने का एक लंबा सफर है।
जैसे वो ल्यूमिनॉल वाला उदाहरण था।
बिल्कुल, जैसे ल्यूमिनॉल के केमिकल का हमने उदाहरण देखा था, सही समय आने पर और सही रोशनी पड़ने पर ही वो असली तस्वीर चमक उठती है जो हमेशा से वहीं मौजूद थी।
हाँ।
लेकिन इस चमक को देखने के लिए जरूरी है कि हम हर छोटी छोटी बात में न उलझें, बल्कि अपनी नजर हमेशा बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर पर टिकाए रखें।
ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन ग्रंथों को आकार देने वाले उन प्राचीन लेखकों के भीतर कितनी गहराई और वास्तुकला की कितनी बेहतरीन समझ रही होगी।
सच में ये अद्भुत है।
लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम वापस उस मेडिकल एक्सरे वाली बात पर लौटें जहाँ से हमने आज शुरुआत की थी।
हाँ, जहाँ हमने बात की थी कि कैसे ग्रंथों का ये परिदृश्य सटीकता के बजाय अक्सर धुंधला और अस्पष्ट लग सकता है।
बिल्कुल, हम आज के समय में हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सरे मशीन में हमें टूटी हुई हड्डी तुरंत दिख जाए। लेकिन टाइपोलॉजी हमें ये सिखाती है कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ तुरंत स्पष्ट हो जाए। कभी कभी लंबे समय तक हमें बस एक धुंधली सी परछाई या किसी भव्य इमारत का एक अधूरा ब्लूप्रिंट ही देखने को मिलता है।
हाँ, और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहाँ कोई डिजाइन या उद्देश्य मौजूद नहीं है।
बिल्कुल नहीं, इसका मतलब बस इतना हो सकता है कि हम अभी तक कहानी के उस हिस्से तक नहीं पहुंचे हैं जहां वो कागज का ब्लूप्रिंट असल में एक थ्री आयामी इमारत में बदल जाता है।
और सच कहूं तो यही बात इतिहास के इस अध्ययन को सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाला बनाती है। वो अधूरापन भी उस भव्य डिजाइन का ही हिस्सा है।
और इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल आज हम यहाँ छोड़ना चाहते हैं।
जी,
अगर प्राचीन समय की ऐतिहासिक घटनाओं में इतने गहरे, इतने बड़े और जटिल पैटर्न्स मौजूद हो सकते हैं जिन्हें पूरी तरह समझने में सदियों का समय लगा,
सोचने वाली बात है।
तो क्या ये संभव है कि आज के वर्तमान ऐतिहासिक घटनाक्रम जो हर रोज न्यूज में आते हैं और जो हमें बेहद उथल पुथल भरे, बेतरतीब या बिना किसी दिशा के लगते हैं, वे भी किसी बहुत बड़े अनदेखे मैक्रो पैटर्न का हिस्सा हों?
एक बहुत ही गहरा विचार है ये।
एक ऐसा पैटर्न जिसे हम शायद तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इंसानियत के इतिहास की ये कहानी अपने किसी अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच जाती।
बिल्कुल,
शायद हम आज भी उसी अंधेरे कमरे में खड़े हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ है, बस सही समय पर उस लुमिनॉल के चमकने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जो केवल अतीत को ही नहीं बल्कि हमारे आज को भी देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है।